किसी ने किसी चेष्टा से कृष्ण का गोपियों के साथ में विलास करा और उससे उन गोपियों को जो आनंद होता है उससे कोटि गुण राधिका जी को आनंद होता अभी मैं राधिका जी को उतना आनंद होगा ललिता जी का करते साथ में कृष्ण के दिन इसलिए नाना कभी कृष्ण प्रति संगम कर आत्मसुख राधा जी का आत्मसुख से कोटि गुण सुख पाए अपने सुख के प्रति कोटि गुण सुख को राधा जी को आनंद होता है। क्या होता है ये विशुद्ध प्रेम है इसमें कोई स्वार्थ नाम की कोई चीज नहीं है इसलिए ऐसा होता है। इसलिए अनन्य अनन्य ने विशुद्ध प्रेम पर वस्तु की सात बार प्रेम दे कृष्ण है सहज गोपी प्रेम नए प्राप्त काम काम क्रीड़ा का नेता तो ही काम जगत में कृष्ण बड़े सुंदर में कहा जाए श्याम रंग उनका है तो हम लोग श्याम की उपमा कहां से खोजें मेघ के समान मेघ अच्छा लगता है जबकि हमारे खूब प्राण निकल रहे हैं और उस समय कुछ शीतल श्याम मेघ यदि खोले तो देखने में कुछ अच्छा लगता है और वर्षा होने लग जाए खूब घना घोर 10 दिन 15 दिन तो श्याम मेघ अच्छा लगेगा इसलिए जगत में श्याम कैसे कृष्ण का रंग श्याम है कैसा और कपड़ा जैसा काला है कृष्ण जगत में ऐसा कौन कोई काला रंग है जो कृष्ण से समता हो सकता है। कृष्ण हमारे केश के समान काले नैनों में जो काली टुकड़ी होती है ऐसे में कहते हैं जगत में कोई तुलना नहीं है जो देखेगा ये तो समझ देती जो देखेगा वही समझेगा दूसरा नहीं समझ सकता तो भी एक तुलना दे देते हैं श्याम सुंदर त्रिभंग ललित है कैसे भी त्रिभंग ललित है जैसे छोटा सा बच्चा मैया के पास आ रहा है और कैसे ऐसे पोज करके आता है मैया देख सकते कृष्ण का त्रिभंग ललित ऐसा ही न कैसा पेड़ जैसा ऐसा पेड़ा होता ऐसे पेड़ है कैसे कोई है जगत में कोई तो भी कोई साखा चंद्र में ऐसे तो उसी तरह से इसकी भी उपमा दी गई है विशेष करके गोपियों का जो प्रेम है वो काम है इस जगत में इसकी तुलना काम से दी गई है काम में आदमी पागल हो जाता है एकदम पागल हो जाता है कोई खंड ज्ञान नहीं आता बुद्धि अच्छादित हो जाती है ऐसी उसकी बुद्धि हो जाती है किसी की नहीं सुनेगा माता पिता भाई बंधु गुरुजन ऐसा नहीं तो किसी की शंका दी गई है उस कृष्ण प्रेम से जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम होता है वह ऐसा ही हो जाता है कि सुब्रह्मण्य में किसी भी बात लग जाता है तो लग ही जाता है थोड़ी सी क्षमता है बहुत दूर की क्षमता है कभी जगत में कोई उदाहरण के लिए नहीं है इसलिए जगत में सबसे प्रबल होता है काम कामना वासना किसी की विशेष करके पुरुषों के लिए स्त्रियों के लिए फर्क पड़ता है जो काम मिलने का जो इससे बढ़कर तो जगत में कोई नहीं जितना भी समर युद्ध कुछ हुआ बड़े बड़े युद्ध हुए महाभारत का युद्ध किस लिए हुआ कहते हैं तीन चीज के लिए युद्ध होता है
जर्मन क्या जल जोर जमीन
जरूर कर देंगे मैंने जो चिंता रामायण का युद्ध किस लिए हुआ लंका में
जोर
महाराज का युद्ध किस लिए हुआ? द्रौपदी के लिए हुआ,
जमीन के लिए?
नहीं, जमीन वाला कौन है उसके लिए वो देने के राजी थे।
मुख को
द्रौपदी ने ये प्रतिज्ञा की कि जिसने हमारा सैन्य धर्म करने की चेष्टा की है और जिसने हमारे केस को पकड़ा है उसके रक्त से अपना जुड़ा तांडव ने तो खोल दिया है जीवन का पक्षला है, मैं अब जुड़ा नहीं बांध और हमारा हृदय से कांटा नहीं निकलेगा। कांटा निकलेगा जब दुशासन और दुर्योधन, दुर्योधन के जंगे कारक और उसका दुशासन के पूजाओं कारक जब निकलेगा ताजे ताजे रक्त से अपने सिर लगा करके इसलिए मां बात नहीं तो वो जमीन के लिए कोई बात नहीं। तो फिर वो अर्जुन जी सरकार रहे हैं जिसे अरे भिक्षा मांग करके हम रह जाएंगे युद्ध करने की क्या जाए, किंतु इस द्रौपदी की प्रतिज्ञा ने कृष्ण को भी खिला दिया और पांडवों को इसलिए। तो ये संसार में सबसे बड़ी चीज है, इसको कोई रोकना बड़ा भारी, ऋषि महर्षि ब्रह्मा इत्यादि संसार सब लोग इसलिए थोड़ी सी उसकी तुलना दी गई बहुत दूर से जो ऐसा प्रबल काम है तो वो है प्रेम और यहाँ का है
काम,
किंतु असल में काम वही है। थोड़ी सी उसकी विकृति जगत में इसलिए इसको काम कह दिया गया। अब लोग इसी को समझते हैं जैसे माया, माया माने हम जितने जगत के गुरु हैं समझते हैं दुर्गा जी को माया क्योंकि उनसे संबंध है। माया जो कृष्ण की योग माया है ये कोई नहीं समझता, इस जगत में वही समझते हैं जो पक्ष है और कोई नहीं समझता। इसलिए उसका इसलिए वो परिवार प्रेमयोग गोपायाम रामायण काम वेदों में शास्त्रों में उपनिषदों में पुराणों में गोपियों का प्रेम ही काम या गोपियों का काम ही ये विश्व प्रेम प्रेम इति उद्धव उद्धव नारद भीष्म बड़े बड़े सत्सव के लोगों ने ऐसा ही कहा है। वाणिज्यों के भगवत किया गोपियों के प्रति के प्रति जो काम है प्रेम है जिसको उद्धव भीष्म नारद सूर इत्यादि की काम है ऐसा वो काम है। ऐसे ऐसे महापुरुष लोग भी आज जन्म ब्रह्मचारी जो सत्य में चिंतन करते हैं ब्रह्म की चिंतन करते 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 उसमें सामने हो जाते हैं संसार क्या चीज है वो जानते नहीं है वो लोग यज्ञ की वेद की स्तुतियां ये लोग ही उनकी कामना उसमें कुछ लोगों ने पाया कुछ ने नहीं पाया। दंड कारण निवासी ऋषियों ने लाखों वर्ष तक तपस्या करके उसको किसी की चिंता दिया के बात है जो इसमें ये काम ऐसा है ये जगत का काम ऐसा है जो अपने लिए सुखकर होता है अपने इंद्रियों के लिए तृप्ति कर होता है वो कर आता है ये जन्म लगे हुए लोगों के काम अनर्थ का भी है। यदि मान लें कि किसी को कुछ कट गया ना और जन्म लोहा लगा हुआ लोहा उसमें थोड़ा सा मिल गया तो क्या होगा वो साथ ही साथ में मरेगा क्या हो जाता है किचन में सो जाता है बचने की संभावना कम साथ ही साथ में होगा तो ये जन्म लगे हुए लोहे के समान अत्यंत निकृष्ट है जो अपने सुख के लिए होता है। जहां तक अपना सुख है कृष्ण का भजन करने से मुझे दुख होगा तो ये भक्ति हुआ कि काम हुआ। आपने कृष्ण को पंखा झलूंगा और कृष्ण कदम वृक्ष के नीचे त्रिभंग रूप में ललित त्रिभंग रूप में खड़े हों बंसी बजाते रहे हों
और हमारे तरफ में ललचाई नजर से देखते हैं और मैं इनको दफन करके निहाल दूंगा। ये भक्ति है ना, क्या चीज है ये काम है, ये काम है। पेपर की ताकि से पुस्तक निकली और सुनानी
मेरा
आदत है,
मैं ख्याल हो
जाऊं इसलिए
काम है।
अपने सुख के लिए यदि प्रभाषिक चीजें भी अपने सुख के लिए होगी तो इसका नाम हो जाएगा काम। अभी भागवत पाठ कर रहे हैं और ये होगी पाठ करना हमें इसको सबके सभी लोग हमारे प्रति आकर्षित हो जाए तो ये हो जाएगा काम भक्ति में। और यदि मेरा ये लक्ष्य है कि हमारी बातों को सुन करके सबका ये सिर्फ प्रदर्शन है तो ये क्या हो गया, उन श्रोताओं के लिए भक्ति होगी, मेरे लिए भी भक्ति है। और यदि ये रहे चढ़ावा इतना आएगा, पैसे आएंगे, हमारी बड़ी प्रतिभा बड़े उच्च कोटि के लिए होगा, बहुत ही अच्छा। जब यहां शुरू करके चल रहे सभी लोगों ने प्रणाम करना आरम्भ कर दिया, वाह महाराज आपने तो अंकुश कर रहा है, सुन करके हमारे हृदय में दूध ही होने लगी, बड़ा आनंद है। ये हो गया काम, ये भक्ति से कोई संभव नहीं।
द्रौपदी ने पुकार की थी मेरी इज्जत की रक्षा करो, द्रौपदी ने पुकार की मेरी इज्जत की रक्षा करो, ये क्या है?
मेरी इज्जत यह है कि लोग ये कहेंगे ये भक्त हो करके, कृष्ण की भक्त हो करके इसकी ऐसी दशा हुई, इसलिए मेरी इज्जत मैंने आपकी इज्जत रखी है, कृष्ण की इज्जत रखी है। कि लोग आपको ये ना कहें कि कृष्ण ने भक्तों को देखना छोड़ दिया, आया समझ में क्या? गोपी इसलिए, द्रौपदी इसलिए रो रही है, आज यदि मेरी लज्जा गई तो कृष्ण के प्रति विश्वास समस्त जनता का उठ जाएगा और कोई भी भगवान को नहीं आएगा। जो कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं ये भाव जगत से उठ जाएगा, सब
नाश्ता
इसलिए ये उनकी लज्जा है। लज्जा ये नहीं कि हमारा अंग लज्जा से दिख जाएगा और उन्हें बेइज्जत हो जाऊंगी, ये नहीं थी, ये साधारण व्यापार है। कृष्ण के प्रेम में धब्बा लग जाएगा जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वो तो भगवान की परिकर थी, वो तो कहते हैं तो स्वामी इत्यादि से भी श्रेष्ठ हैं, उनको भी परामर्श देने वाली है, उनको शिक्षा देने वाली है ये द्रौपदी, वो लक्ष्मी है, वो साधारण है। कृष्ण जिनको कहते हैं सखी, अपनी सखी बना लिया, वो सखी का भाव कैसा? कृष्ण का जो उनके प्रति जो भाव है कि कैसा भाव है, जैसा अपनी बहन सुभद्रा है, बहन है सुभद्रा के प्रति जैसा भाव है, उससे भी हजार गुना भाव उनका, इतना शुभ पवित्र, जैसे गोपियों का प्रेम पवित्र है ऐसे ही है। कृष्ण जिनके कहने से उठते बैठते हैं, पांचों पंडव उठते बैठते हैं, किंतु थोड़ी सी आश्चर्यमयी भक्ति है, आश्चर्य नहीं, कृष्ण को आश्चर्य दिखाना पड़ा इसलिए आश्चर्यमयी भक्ति माधुर्य वही नहीं है, बस इतना ही जरूर। तो इसलिए जहां तक कोई भी भगवान की भक्ति भी साधन अवस्था में, हम लोग का प्रीतिम भक्ति किस लिए नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि हम प्रीतिम करके हमारा जो आ जाती है प्रतिष्ठा, धन संपत्ति ये सब। अच्छा, आप प्रीतिम में गए थे, वहां से क्या क्या मिला, क्या हुआ, कितना हुआ रुपया, कितने शिष्य बने, ये सब तो होगा कि नहीं? प्रीतिम करेंगे और शिष्य नहीं होगा, ऐसा होगा? तो ये सब यदि, इसलिए यदि हमारा प्रीतिम और ये सब कुछ हो रहा है, प्रचार हो रहा है, भागवत पाठ हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, कीर्तन में हम जाते हैं, सब लोग यहां से जाते हैं मंगलवार। मैंने कहा कि भैया तुम लोग किसी का दिया हुआ प्रणामी मत लेना, अपनी भक्ति को दो रुपये में मत का या 20-50-100 रुपये में मत ये करो। उनसे कहना कि हमारी ये छोड़ी है, इसमें हरि नाम दे आप लोग बच्चे तो इसका प्रचार लोग आपकी सुंदर विचार है। कृष्ण कृष्ण का कर्तव्य तो एक बार तुम अच्छे एक बार आप कृष्ण का शुद्ध आचरण में रख करके भगवान ना ये सबका प्रचार और गए 50 रुपया 100 का 10 रुपया मिल गया तो उसमें गड़बड़ी आ सकता है, ये आता ही है, किंतु हम लोगों को बचने की चेष्टा करनी है। इसलिए जहां तक अपने इंद्रियों का सुख का प्रश्न है वो भक्ति नहीं बल्कि वो काम है। अब इसी को विचार करके अपने जीवन में चलना चाहिए, विचार करना चाहिए हम जो कुछ कर रहे हैं ये भक्ति है या नहीं। कहीं हम प्रतिष्ठा में धन में पैसे में काम में कहीं आकर्षित तो नहीं हो रहे या सचमुच में यदि ऐसा किसी का सुख दर्द होगा तो वो जरूर उसके जो सुनने वाले हैं भगवान की तरफ भी जरूर कुछ न कुछ रूप में जरूर और प्रतिष्ठा लाभ होगा पूजा इत्यादि तो जैसे गौरंग लीला जो करते हैं हर गोविंद जी लीला करते हैं लीला में जो आंसू बहाएंगे और ऐसे ऐंठ करके कुछ पैसे ले आएंगे उनको 40-50 हजार 1 लाख रुपया मिल जाएगा वो भी संतुष्ट हो जाएंगे हम भी संतुष्ट होकर के लौट आएंगे फिर कोई संबंध नहीं। कृष्ण को प्राप्त करो कृष्ण का हमारे यहाँ एक ब्रह्मचारी जी थे उनका नाम था गोविंद बाबा जी लोग उनको अब पगला कहते थे पढ़ा लिखा एकदम नहीं बड़ी बड़ी पाग बांध लेता और देखिए मुझे दुबले पतले कुछ ऐसे बड़े बड़े अफसरों के यहाँ बड़े बड़े वकील बड़े बड़े अफसर उनके यहाँ जाकर के उनके चेयर पर बैठेगा उनको नीचे बैठाएगा या उधर और वहां पर बिना बुलाया वहां पर बैठ जाएगा मूल उनके चेयर पर कहे कृष्ण कृष्ण बोलिए कृष्ण कृष्ण बोलो मैं बंगला जानते थे हिंदी जानते थे और उस समय के हम समझते हैं कि 5-7 आदमियों को बड़े बड़े अफसरों को तो हमारे मठ में चलो वहां पर महाराज जी हैं उनसे बातचीत करो कुछ हरिनाम करो और उनको यहां पर ले आते हैं यहां पर आने से हमसे बातचीत होगी बड़ी उसकी प्रशंसा करते और वो लोग पीछे से भी हरिनाम दे दिया और मठ के अंदर होकर के खत्म कर वो कुछ देते भी तो मठ में लेकर के देना और आधार का इत्यादि कुछ लिया तो ये भक्ति है अपने लिए नहीं। यदि मैं यहां पर बैठ करके अपने लिए कुछ करता हूं तो ये काम हो जाए। यदि वो प्रतिष्ठा लेता हूं गुरु के चरणों में वो प्रतिष्ठा नहीं देता तो ये भक्ति नहीं होकर के काम हो जाए। हमारा जो कुछ है अपना क्या है क्या चीज है सब तो गुरु जी का है इसलिए ऐसा समझ करके विभाजन करेगा जो तुम्हें तो ठीक है नहीं तो वो सब काम हो जाए। इसलिए कृष्ण सुख तात्पर्य गोपी भाव और इसमें चूड़ांत सीमा तक है गोपियों का अपने लिए निज इंद्रिय सुख पर ध्याना है गोपी का कृष्ण सुख जीते पड़े संगम जो कुछ इनका है मिलन कृष्ण के साथ में उनकी सेवाएं हैं सब कृष्ण को आनंद देने कृष्ण को आप्त कामों में भी आराध्य है आप्त कामों के आराध्य उनमें कामना है कि नहीं उनमें भी कामना नहीं गोपियों की इच्छा देकर के उनके इस चीजों को ग्रहण करते हैं उनको प्रसन्न होने के लिए क्या दिनोदाय भक्तान दिनोदाय
मन भक्त दिनोदाय करो
विविध प्रकार की जो क्रियाएं करते हैं नाराज किसके लिए आती है कृष्ण ने अपने लिए उन्होंने भक्तों को विनोदन करने के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए किया। कृष्ण डिड रात नॉट फॉर सेट इन हिमसेल्फ बट ही डिड रात ओनली टू प्लीज गोपी एंड गोपी डिड रात ओनली टू प्लीज नॉट फॉर सेंसर। अपने लिए इस तरह से हम लोग अभी साधन करेंगे, इसी का नाम है साधन। जो कुछ करें अपने प्रसन्न होने के लिए न कर सके, गुरु वैष्णव और अभी तो गुरु वैष्णव सामने हैं, कृष्ण अभी नेपथ्य में है, कनिष्ठ अधिकारी के लिए नेपथ्य में है, उत्तम अधिकारी के लिए साक्षात यहां पर बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं। इसलिए जो कुछ भी हम करें, जो कुछ भी साधन भजन जो कुछ भी करें, इसके लिए करें अपने गुरु जी को प्रसन्न होने के लिए। वैष्णव जो हमारा कल्याण चाहते हैं उनके लिए हमको एक छोटा सा काम करना है, हमको बाजार से कुछ लाना है, पानी लाना है। भाई किसके लिए पानी लाते हो? किसके लिए? अपने लिए लाता। तब तो क्या हो गया? गुरु के लिए, वैष्णव के लिए, भगवान के लिए। तो ये हो गया भक्ति। यही अभी ये भक्ति इस तरह से अपने जीवन में जो कुछ करना है, इन और लाइफ वॉट वी आर लाइफ टू डू इट्स बिडन बट इन फ्लेवर ऑफ गुरु एंड वैष्णव एंड नॉट फॉर कोई भी काम। हम लोग यहां पर पाठ श्रवण करने के लिए आते हैं, किस लिए आते हैं? कुछ ज्ञान होगा, भक्तों का आश्रम होगा तो हम भी कृष्ण की सेवा कर सकेंगे, गुरु जी की सेवा कर सकेंगे, वैष्णव की सेवा कर सकेंगे। प्रारंभ किया अपने लिए कुछ मत करो, हम लोगों को अपने लिए कुछ नहीं करो, किसी का नाम करो। तब करेंगे हम किसके लिए? ऐसा भी अभ्यास स्वतंत्र देखे माया उसको पकड़ नहीं सकती। मुनि साधु लोग किस लिए प्रयत्न करते हैं? लाखों जन्मों से जन्म जन्म मुनि अंतराम कही जन्म जन्म करते हैं, किस लिए? इसी में कल्याण है, एकदम पक्का समझना चाहिए भाई, इसी में हमारा कल्याण है। दूसरे विषय में कल्याण नहीं है, विशेष करके कलयुग में इसी के द्वारा साधन ऋषि महर्षि ये सब मुनि क्यों कहा? इसलिए शरीर की अपेक्षा शुभ शरीर की अपेक्षा मन प्रबल है। जब तक शरीर है तब तक ये मन की प्रबलता होती है। शरीर के कुछ काम करके भी मन के द्वारा यदि हम न करें तो वो नहीं के बराबर होता, और शरीर के द्वारा नहीं करते मन के द्वारा करते हैं तो वो करना मने मनुष्य कारण बंधन हो। मनुष्य का मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है। माइंड ऑफ पर्सन इज द कॉज ऑफ मुक्ति और बंधन। इसलिए मुनि को कहा जो सप्त में भगवत चिंतन करने वाले ये संसार से पार हो सकते, संसार का कोटि कोटि जन्म में अनुभव किया। इनको भरत जी को बारह जी किस लिए इतना अधिक हुआ जो तुम किसी से बोलते नहीं थे? इसका कारण क्या है? बतला सकते हैं क्यों ऐसा बारह जी क्यों हुए? बोलो तो सुधर तुम बोलो तो भरत जी को महाराज जी को इतना बारह जी तीसरे जन्म में ब्राह्मण होकर के आए या मृगी होकर के आए? मृग होकर के इनका बारह जी इतना क्यों हुआ? कारण क्या? इतना डीप गया भाई भक्त महाराज है तो डीप गया क्यों बारह जी? बतलाओ क्यों? बतलाओ तो अपने
जल भरत
हाँ उनको दूसरे जन्म में इतना बारह पहले जन्म में तो आप हो गए, दूसरे जन्म में क्यों नहीं? आप
उनको ज्ञान प्राप्त हो गया ना, पहले आसक्त होने के कारण उनको समझ आ गई कि इसका दुष्परिणाम क्या होता है,
इसको विचार करना चाहिए। हम लोगों को भी तो जगत में जब अटैच होते हैं, जगत में जन्म से मरण तक केवल दुखी दुखी होता है, किंतु ये अनुभूति दूसरे जन्म में काम करती है
नहीं?
क्यों? क्योंकि भूल जाते हैं, वो भूले नहीं थे ये काल था।
किरण में भी याद रही,
किरण में भी याद रही, ब्राह्मण होकर के जन्म सभी वो पहले जन्म वाले भूल की बात हो, थोड़ी सी आसक्ति सात्विक आसक्ति के कारण हमारा ऐसा सर्वनाम जो है जो मैं इतना ऊंचा ऊपर के नीचे पसंद में नहीं मिल गया, ये याद थी उनको बात, हम लोगों को याद नहीं रहती। यदि याद रहती तो हम लोग खुद पूर्व लाखों जन्म नैदैनिक कीड़े मकोड़े गधे ढेर नैदैनिक याद सुअर हुए और उस समय क्या नहीं किया हम लोगों ने, यदि सुअर जन्म मिला तो क्या करते या क्या किया है? जैसे सुअरों को देखते हैं ऐसा ही कहूंगा नहीं, गधे ढेर कृमि कीट पतंग ये सब देखा। यदि याद होती तो हम कृष्ण भक्ति को छोड़कर के संसार में भी बढ़ते, किंतु याद नहीं, उनको जाति स्मरण थे। जाति स्मरण क्यों? पूर्व जन्म का किसको याद रहेगा? भजन राज्य में जो भाव तक पहुंचेगा वो जो भाव अब उदित होने वाला है, आसक्ति के ऊपर में भाव होता है, वहां तक आ जाने से दूसरे जन्म में जाति स्मरण। किसी किसी को अच्छे कर्मों के वजह से उनको पूर्वजन्म की बातें तब तक याद रहती है जब तक कि माँ का दूध नहीं पिया, जन्म लिया तब तक याद आ रहा है, खूब रोते हैं चिल्लाते हैं। किसी किसी से उसे ऊपर वाले होते हैं उनको तब तक जन्म नहीं किया जब तक कि अन्न नहीं खाते, दो तीन वर्ष चार वर्ष तक के लिए उनको याद रखती है। और इन लोगों को याद रखती है जीवन भर, वैसे हम लोग को याद रहती तो आज हम लोग कितना ऊपर उठ जाते संसार के प्रति बैठा, किंतु याद
नहीं। दूसरी बात विचार देते हैं भगवान ने अपना आसक्ति है, भगवान की कृपा को आसक्ति देखिए वहां पर तीन जन्म में तक जाति पार्टी दे।
कारण क्या था? भगवान ने उन पर क्यों किया? यही सब कारण था।
उनको
भगवान ने ही स्मर किया, जाति स्मर बनाया, उन्होंने पहले तो आसक्ति थी किस किया
पार्टी,
और भी लाखों जन्म लगता यदि याद नहीं होती और भगवान की कृपा नहीं होती तो पत्थर याद ही नहीं रहती और ये सब काम नहीं होता, फिर उसी में अटक जाता। इसे लाखों कोटि अरब खरब जन्म चले जाते जब गोपाला कृष्ण का पैसों का संग छोड़ दो, भगवान का साथ रहा, भगवान के साथ रहे और भगवान कैसे सबके भगवान सबके भगवान सबके भगवान मैंने कैसे राधा कृष्ण मिली ऐसे टॉप के भगवान के साथ में रह करके भी नहीं रखा कर सके किसकी ताला कृष्ण उसका फल भोगने के लिए भी छोड़ दिया और जन्म वहां से लौट करके आया उसको क्या कहा? बड़ी कठिन चीज है। बैठकों का पल्ला यदि पकड़े कोई और उनका चरणा से दूर रूप से करे तो भगवान को भी झुक जाना पड़ेगा, इसलिए ऐसे बैठकों का यदि कोई ग्रहण करता है तो पक्के रूप में बिना उनके आश्रय के कुछ नहीं करना, तब तो यह भक्ति पूर्वक हो जाए, नहीं तो बड़ी कठिन, नहीं तो अपने सुख के लिए सभी कुछ सब समय भगवान का भजन करेंगे, प्रेसेंस देंगे अपना क्यों भजन कब करेंगे? जैसे हमारा सोने का खाने का समय स्नान करने का समय ठीक रख करके जो बाकी बचता है अपने कर्म में जाएंगे, कर्म के बाद में जो आता है समय उसके लिए भजन करेंगे। ऐसा ही तो करते हैं ना। इस भजन से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। जब सब कुछ उन पर जब ही छोड़ दिया जाए तब क्रम में आ सकता है, ये क्रम है, यही ऐसा ही क्रम धीरे धीरे धीरे। कृष्ण सुख दीते पड़े संग, इसलिए गोपियों का एक गोपी कृष्ण को पंखा दे या चमक बुला दे। कृष्ण का रूप देखा मोहित हो गई, मुक्त हो गई, और देखते देखते उनका यह रूप और हाथ से छुट गया, नीचे गिर गया, झट एकदम सचेत हो गई और झट उसको उठाकर अपने को धिक्कार देती। आप कृष्ण की सेवा में हमारा प्रेमानंद, हमारा जो प्रेम का जो आनंद है ये बाधा भी है, धिक्कार है उसको धिक्कार कर। कृष्ण को जो हम सेवा कर रहे हैं इसलिए हमारा इतना सौभाग्य, इतना मुझे आनंद मिल रहा है, इसके आनंद को जगत के लोग इसको समझते नहीं। बस इसी को गुरु जी की सेवा में इतने तन्मय हो गए, इतने तन्मय और इतना आनंद हुआ कि गुरु जी को इससे आनंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भूल गए। एक कोई भक्त था रामानुजाचार्य, सुरेश के वजह से वो कुछ देश छोड़ करके उनको भागना चाहता। सुरेश जी को लोगों ने दुख, लोगों ने वो वैष्णव धर्म का प्रचार हो रहा था, इनका शिष्य प्रिय था सुरेश। उसने कहा गुरु जी आप देश को छोड़कर के चले जाइए और सन्यास का देश मुझे दे दीजिए, मैं सन्यास का देश लेकर के मैं आपके बदले में वहां जाऊंगा और जो कुछ होगा मैं आप जगत का कल्याण करने आपको। इसलिए वो रामानुजी की बात को सुन करके चले। रामानु समर्थ थे, सर्व समर्थ, वो सब कुछ कर सकते थे, किंतु शिष्य की एक उदाहरण रखने के लिए जगत में ये चीज ऐसा होना चाहिए इसलिए वो चले गए। और वहां जाकर के उनकी आंख निकाल ली गई सुरेश जी की, सभा हुई, बात भी ठंडा हुआ, उसने उन लोगों को परास्त कर दिया, किंतु ये अकेले और वो लास्ट, इसलिए ताली बजाकर बता दे हमारी जीत हो गई। इसकी हार उनकी राजा ने कहा उनकी आंख निकलवा कई और आंख सुन जीव तो स्थान में निकाल सकते हैं, दुख भोग मरे नहीं, यदि मर ही गया तो फिर दुख क्या होगा। इसलिए दुख भोगाने के लिए दोनों आंखों को निकाल और छोड़ दे जाओ, चिकित्सा भी नहीं कराई, छोड़ वो जंगल में रामानुजी जा रहे थे। एक गांव है, उनके दो भक्त, एक धनी एक गरीब। उन्होंने सोचा कि हमारे साथ में तो 50-60 भक्त हैं, इसलिए मैं धनी भक्त के यहां जाऊं तो उसको कोई कष्ट नहीं होगा और वहां पर गरीब भक्त भी आ जाएगा, मिल जाएगा मुझसे, और वहीं पर दो एक दिन ठहर करके फिर आगे बढ़ेंगे। इसी समय में उन्होंने अपने दो शिष्यों को भेजा कि जाओ धनी हमारा जो भक्त है उसके घर में जाओ, कहना कि रामानुजाचार्य आए हैं, आपके गुरु जी आए हैं, आज वहीं पर खड़े हमारे गुरु सब चीज की लोग चले गए और उसको खबर दिया। वो आनंद के मारे एकदम पागल जाता हो गया, घर में गया और ये चीज की व्यवस्था करने में लग गया और दोनों चीज से वहीं पर बात कर पार्टी में खड़े रहे, कुछ पूछा ही नहीं आनंद लगी। उन दोनों शिष्यों ने सोचा कि अब आएगा और हमें खबर देगा, सब चीज जैसा होगा था नहीं, वो आया नहीं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधा घंटा तक वो आया नहीं। लोगों ने कहा जैसे तो ये हम लोग कुछ मानता ही नहीं है, गुरु जी आए तो भी सही नहीं और जाकर के रामानुज से उसी समय रामानुज बोले चलो गरीब के यहां चलेंगे। वहां पर गए, उसकी पत्नी थी, उन्होंने अपना सतीत्व भी नष्ट करके एक दूसरे से और कुछ उधार लेकर के और उनकी सेवा की और सेवा कर रहे, जब सेवा वहां पर कर रहे तब तक ये पहुंचा शनिवार, तब तक तो यहां पर सब चुके बड़ा अफसोस किया। और उसी समय में उसी गांव में उनका शिष्य घूमता हुआ सुरेश आया, उन्होंने रामन याद कर दिया, बड़ा प्रसन्न वहां पर हरी कथा हो रही थी। और जिसकी बदमाशी नियत थी रमन याचार का थोड़ा सा प्रसाद पाया, एकदम उसका चित्त बदल गया, परम शुद्ध होकर के रमन याचार जी का शिष्य हो गया और उसको प्रणाम करके उनके चरण में समाना। बड़ी सभा हो रही थी उसी में रमन याचार जी कुछ उपदेश दे रहे थे सब लोग, और इतने में सुरेश दुबला पतला मरीज मरा हुआ आंखें निकली हुई लोहे लहन का होता हुआ वहां पर पहुंचा। गुरु जी की बात सुन करके वो आज गुरु जी का दर्शन, इतने में रामानंद जी आचार्य ने दिखाई ये कौन है, कहा जी ये रो रहा है और आ रहा है घर में, दिखा तो वही सुरेश को नहीं सुरेश के, बस इधर से ये दौड़े सुरेश सुरेश जाते हुए और उधर से वो गुरु जी कहता है दर्शन की इतनी लाशा हुई दोनों आंखें छट निकल जी भर करके उसने रामानंद अपने अंकों में उसे समझ राम सुरेश ने कैसी शिक्षा दी अपने लिए किसके लिए सब आइए जानते हुए भी सबद्ध होते हुए भी रामानंद सब सब सामर्थ्य रहते हुए भी इन्हें लोक शिक्षा के लिए ये सब उतारे, क्या जरूरत थी इनकी आंख निकलवाने की। उसी समय में रावण का पे जाओ वो राजा अंधा हो जाए फिर भी क्या,
पहले नाम था गोलक तुम से हुआ तुम भी बन सकते
तो पहले ही कह देते नहीं दिया है लोक लिया और इतनी शिक्षा है। इसलिए आप किसी भी काम में हम ये देखेंगे इसमें हमारे गुरु जी की वैष्णव की और भगवान की प्रसन्नता होती है कि नहीं, ये विचार कर हम ये ना विचार करें हम कैसे सुख से रह करके भजन करेंगे, हमारा इससे भजन किससे कैसा होगा, अभी सुखल सुखल है किसी दिन में हो सकता है किसी परिस्थिति आएगी।